તારીખ 10/6/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 833 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું માઉન્ટ આબુમાં પ્રવચન.
રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્ર 833માં ચાલતા હે. ભગવાન કો ઓર સત્પુરુષ કો નમસ્કાર કરના ચાહીએ. પરમ સુખ સ્વરૂપ પરમોત્કૃષ્ટ શાંત શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ સમાધિ કો સર્વકાલ કે લિયે પ્રાપ્ત હુએ હૈ વે ભગવાન કો નમસ્કાર. और शुद्ध भगवंत है वो परम सुख स्वरूप है. आत्मा का परम सुख प्रकट हो गया है. आत्मा के स्वभाव में जो परम सुख है वो प्रकट हो चुका है. परमोत्कृष्ट शांत है और शांति की उत्कृष्ट शांति प्राप्त हुई है. और शुद्ध चैतन्य स्वरूप समाधि को सर्वकाल के लिए प्राप्त हुए हैं. शुद्ध चैतन्य अपना स्वरूप है, उसमें जो सर्वकाल के लिए लीन हो गए हैं, समाधि को प्राप्त हुए माने लीन हो गए हैं. अब वहाँ से उनका परिणाम एक अंश भी बाहर निकलने वाला नहीं है. ऐसे शांत स्वरूप में जो पूरे के पूरे जम गए, लीन हो गए आगामी सर्वकाल के लिए, ऐसे रियंत और सिद्ध भगवंत को नमस्कार. भगवंत को नमस्कार, वो भगवंत हो गए. जो भगवंत होते हैं वो भवंत होते हैं, उसका भव भी खत्म हो गया. कोई नया भव होने वाला नहीं है. और उस पद में निरंतर लक्ष्य रूप प्रवाह है जिसका, वे सत्पुरुषों को भी नमस्कार. यह पद में निरंतर लक्ष्य रूप, लक्ष्य माने ध्येय जो साध्य होता है, ऐसा हमेश के लिए परम सुख रूप शांत समाधि प्राप्त होने का जिसका लक्ष्य है, जिसका ध्येय है. और लक्ष्य कैसा होता है, जो हमेशा प्रवाह रूप रहता है, प्रवाह हमेशा चालू रहता है, ऐसा लक्ष्य भी हमेशा चालू रहता है. ऐसा लक्ष्य रूप परिणमन का प्रवाह जिसका निरंतर रहता है, किसमें रहता है, ऐसे पद की प्राप्ति में हमेशा साधना चालू रहती है. ऐसे जो सत्पुरुष हैं वे सत्पुरुषों को भी नमस्कार. उस प्रकार दोनों को नमस्कार करके अब अपना स्वरूप की भावना आते हैं. मैं सर्व से सर्व प्रकार से भिन्न हूँ. सर्वप्रथम भावना में भिन्नता से शुरुआत करते हैं. मिथ्यात्व अवस्था में अभिन्न भाव चलता है, कैसा चलता है, अभिन्न भाव चलता है परद्रव्य से और परभाव से। खास करके जो उदय के परिणाम होते हैं, उस उदय में जीव तन्मय हो जाता है, उदय भाव में तन्मय हो जाता है। जो आत्मा है वो तो सर्व से सर्वथा भिन्न ही है। वो आत्मभावना भाने वाले को भिन्नता अनुभव में आनी चाहिए, तभी वो भावना सही है, क्योंकि आत्मा भिन्न है। किससे भिन्न है, कि क्या कारण से भिन्न है, कि ज्ञानमय पना होने से भिन्न है। इसलिए ऐसा लेना है कि सर्व से मैंने सभी परद्रव्य से, सभी परभावों से, सर्व प्रकार से मैंने पूरा का पूरा मैं भिन्न हूँ। क्यों भिन्न हूँ, कि मैं अपने आप को ज्ञानमय अनुभव करता हूँ, इसलिए भिन्न हो। यह जो आत्मभावना है, तो आत्मा को लक्ष्य में रख कर के भाने की भावना है। स्वरूप लक्ष्य से भाने योग्य है। अगर स्वरूप लक्ष्य में नहीं रहा तो आत्मा किस भाव, आत्मभावना किसकी भाव है? स्वरूप लक्ष्य में नहीं होता है तो क्या उसको आत्मभावना नहीं भानी चाहिए क्या? कि जिसको ऐसे भावों में रुचि हो वो भा सकते हैं, ऐसे आत्मभावों में रुचि जागृत होती हो, रस आता हो, वो भा सकते हैं। उसको आत्मभावना भाने का कोई प्रतिबंध नहीं है। और जिसको स्वरूप का भाव भाषण में स्वरूप का लक्ष्य हुआ हो, उनको तो ये आत्मभावना भाते ही स्वरूप का भाव विजुअलाइज होगा, आत्मस्वरूप का भावात्मक जो पहलू है उस पहलू से पूरा स्वरूप विजुअलाइज होगा, और वो जीव अपना स्वसंवेदन को बढ़ाएगा या स्वसंवेदन को आविर्भूत करेगा। इसलिए स्वरूप लक्ष्य पूर्वक और ज्ञान वेदन को आविर्भूत करते हुए ये आत्मभावना भाने योग्य है। सर्व से सर्व प्रकार से मैं भिन्न ज्ञानमय हूँ, और भिन्न ज्ञानमय होने से देहातीत स्वरूप हूँ, संयोग में देह का योग होने पर भी वर्तमान में भी देहातीत स्वरूप हूँ, देह से पार हूँ, से भिन्न हूँ बिल्कुल। ऐसा मेरा स्वरूप मुझे बहुत भाता है, ऐसा मेरा स्वरूप मुझे बहुत भाता है, इसलिए मैं बार बार इस भावना के दौरान स्वरूप की भावना करता हूँ। सर्व से सर्व प्रकार से हूँ, भिन्न ज्ञानमय हूँ, देहातीत स्वरूप हूँ, एक केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, एक मैंने जिसमें दो पना नहीं है उसको कहते हैं एक, वो अभेदता सूचक है क्योंकि उसमें गुण भेद और पर्याय भेद, गुण अपेक्षा से गुण भेद है, पर्याय अपेक्षा से पर्याय भेद है, फिर भी लक्ष्य में वो बात नहीं रहती है। आत्मभावना अभेद की भावना होती है, उसमें भेद का लक्ष्य नहीं रहता, यानी अभेद में भेद मालूम ही नहीं पड़ता, अभेद में भेद मालूम ही नहीं पड़ता। ऐसा में एक केवल शुद्ध चैतन्य रूप है, इसमें क्या कहना है कि मैं एक केवल शुद्ध असंग चैतन्य रूप हूँ, भले ही जीव अनंत काल निगोद में रहा, प्रचुर कषाय कलंक में डूबा हुआ, कैसे रहा, प्रचुर कषाय कलंक में डूबा हुआ रहा, फिर भी जीव का जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है वो इंटैक्ट वैसा का वैसा रहा। वही शुद्ध चैतन्य स्वरूप की असंगता है। अभी भी देखो तो शुद्ध चैतन्य वैसा का वैसा शुद्ध चैतन्य ही है, परिणामों में कुछ भी हो जाए, तीव्र से तीव्र कषाय होकर के तन्मय हो जाता है जी, लेकिन स्वरूप से जो शुद्ध चैतन्य बना है वो असंगी असंग रहता है, वो कभी संग किसी से संग को प्राप्त नहीं होता है, किसी भाव से भी वो संग को प्राप्त नहीं होता है, वो असंग चैतन्य रहता है। यही स्वभाव की निर्लेपता है, इसलिए जैसे आत्मा एक केवल शुद्ध असंग चैतन्य स्वरूप है, वैसे ही आत्मा एक केवल शुद्ध निर्लेप चैतन्य है। क्यों? तो उसको लेपायमान पना भी नहीं हुआ, किसी से वो लेपाता नहीं, हम जीभ से स्वाद चखते हैं, किस हजारों स्वाद चखे, आज तक कितने स्वाद चखे, हजारों बार हजारों स्वाद चखे, कौन सा स्वाद हमारी जीभ पर अब है, एक भी नहीं। कौन सा है अभी, कोई एक स्वाद है वहां, कोई बहुत कड़वा भी चखा होगा खाया होगा, बहुत मीठा भी, बहुत तीखा भी, बहुत खट्टा भी, कैसा भी जीभ पर है कोई स्वाद? क्यों के स्वाद को चखते हुए भी वो निर्लेप स्वभावी है, कोई स्वाद से उसका संबंध नहीं रहता, ऐसा ज्ञान का है, और ज्ञान है वैसा आत्मा है, किसी से भी लिपाईमान नहीं होता, इसलिए मैं एक केवल શુદ્ધ નિર્લેપ ચૈતન્ય સ્વરૂપે वो भावना में लेना है और साथ ही निरालंब निरपेक्ष हूं, कोई अपेक्षा वाला संबंध मेरे में नहीं और मुझे किसी के आलंबन की जरूर आधार की जरूर भी नहीं, ऐसा मैं एक हूं। अगर किसी की अपेक्षा और अवलंबन रहता तो मैं एक नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता, एक माने अकेला नहीं रह सकता। और परमोत्कृष्ट अचिंत्य सुख स्वरूप मात्र कैसा हूं, परम उत्कृष्ट कैसा सुख सुख स्वरूप हूं मैं, उत्कृष्ट परम उत्कृष्ट, और चिंतन में नहीं आ सके ऐसा सुख, ऐसा अनंत और अव्याबाद अनंत, और जिस सुख को कोई बाधा नहीं पहुंचा सके, परमोत्कृष्ट अचिंत्य अनंत अव्याबाध सुख स्वरूप हो, ऐसा अनंत सुख का धाम मैं हूं, ऐसा मैं अनंत सुख का धाम हूं। फिर चिंता का है कि किस बात की, जब मैं ही अनंत सुख का धाम हूं, बेहद अचिंत्य अव्याबाध सुख भरा है मेरे में, प्रदेश प्रदेश में, किस बात की चिंता, जीव चिंता तो दुख के कारण से करता है, वर्तमान में दुख हो मिटाने की चिंता, भविष्य में दुख नहीं आ जाए इसकी चिंता। जब मैं ही अनंत सुख का धाम हूं, मेरे प्रदेश प्रदेश में अनंत सुख भरा है, फिर चिंता किसकी। मेरी स्वरूप भावना से मेरा सुख उजागर होता है, आविर्भूत होता है, ऐसा मैं अनंत सुख का धाम हूं, परिपूर्ण निराकुलता। आकुलता का एक अंश, आकुलता का एक अंश का भी मेरे में अवकाश नहीं है, नो स्कोप, अवकाश नहीं है कहीं भी हूं। कहीं भी हूं, किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का मेरे सुख में बाधक होने का कारण नहीं है। कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव मेरे सुख में बाधा नहीं डाल सकते, इसलिए मैं अव्याबाध स्वरूप हूं। ऐसा ठोस सुख से, अनंत ठोस सुख से मैं भरा हुआ, और मात्र एकांत शुद्ध अनुभव स्वरूप हूं, जो उसमें एकांत शब्द लिया है अनुभूति में, क्योंकि जो वेदन है, ज्ञान वेदन है, वो ज्ञान वेदन में सिवा ज्ञान वेदन किसी का प्रवेश नहीं है। ऐसा में मात्र अनुभूति स्वरूप हूँ, एकांत शुद्ध अनुभूति स्वरूप हूँ, मैं मात्र एकांत शुद्ध अनुभूति स्वरूप हूँ। क्यों? कि स्वसंवेदनमयी मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव ही स्वसंवेदनमयी है। आज आखिरी स्वाध्याय है ना, आबू का आखिरी स्वाध्याय है, आ जाओ आत्मभावना में, स्वरूप की उत्कृष्ट भावना में आ जाओ। जो स्वसंवेदन चतुर्थ गुण स्थान में जघन्य डिग्री में प्रारंभ होता है, चतुर्थ गुण स्थान में जो स्वसंवेदन होता है ना, वो जघन्य डिग्री में प्रारंभ होता है, और केवल ज्ञान में उसकी अनंत गुण डिग्री हो जाती है। अपन भगवान की प्रतिमा को देखते हैं ना मंदिर जी में, उसमें क्या देखने का है? अरियंत भगवान का अनंत स्वसंवेदन को देखना है। वेदन एक ऐसी चीज है कि अगर किसी भी प्रकार का वेदन तीव्र मात्रा में देखा जाए तो देखने वाले को उसी प्रकार का वेदन आविर्भूत हो जाता है। जैसे कि रास्ते पे एक पिल्लू गलुड़ी, उसको बहुत दर्द हो रहा हो और वो चिल्लाता हो, क्या वाह 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 करके चिल्ला, असह्य दर्द होता हो, देखने वालों को क्या होगा? दर्द आएगा, वो दर्द का नाम दया है। देखने वाले को भी दर्द हो जाएगा, अरे 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 बेचारे को क्या हो रहा है, क्या हो गया है, चैन नहीं होता, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, चिल्लाता चिल्लाता घुराट खाता है। तीव्र वेदना देखने वाले को वेदना आविर्भूत हो जाएगी। बहुत से पूर्व के संस्कारी जीवों को, बहुत से जिन प्रतिमा का दर्शन करते ही सम्यक दर्शन हो जाता है। तत्वार सूत्र में, मोक्ष शास्त्र में भगवान की प्रतिमा को सम्यक दर्शन का कारण गौण रूप से बताया है। गौण रूप से इसलिए बताया कि संस्कारी जीव को होता है, दूसरे को नहीं होता। जो पूर्व के संस्कारी होते उनको हो सकता है। किसी एक शास्त्र वचन से हो जाए या वेदना से हो जाए या स्वसंवेदन देखते हुए हो जाए। ऐसे वेदन का परिणमन देखने वाले को वेदन का आविर्भूत होने का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और आत्मा का संस्कार नहीं से ऐसा स्वरूप है। संस्कार नहीं से आत्मा पर का संस्कार को झेलने वाला है, प्रवचन सार संस्कार ने और असंस्कार ने। जैसे पेंसिल को छोड़ करके उसकी बारीक पॉइंट निकाली जाती है वैसे, और असंस्कार ने से त्रिकालीन स्वरूप किसी का संस्कार झेलता नहीं है। जैसे बबूल का कांटा स्वरूप से ही बारीक होता है, उसको बारीक बनाना नहीं पड़ता। दोनों दृष्टांत दिया है अमृतचंद्र आचार्य ने, प्रवचन सार के परिशिष्ट में ये दोनों बात कही है। ऐसे मैं एकांत शुद्ध अनुभूति स्वरूप हूं, माने स्वसंवेदनमयी स्वभाव मेरा स्वरूप है। जो केवल ज्ञान में अनंत स्वसंवेदन प्रकट देखा जाता है, वो स्वभाव में था वही प्रकट हुआ है। वो तो स्वभाव में था वही प्रकट हुआ है। कहीं बाहर से नहीं आया। स्वसंवेदन अवस्था है और स्वसंवेदन अनंत स्वसंवेदन प्रकट होवे ऐसा त्रिकाली स्वभाव है। देखने से आविर्भूत हो जाता है, भावना में उसको विजुलाइज करने से वो आविर्भूत हो जाता है। ये इसकी विधि है, इसलिए अनुभव प्रकाश में दीपचंद जी साहब कहते हैं कि अपने परमात्मा को दूर मत देख, अपने परमात्मा को दूर मत देख, क्यों कि मैं ही अनंत स्वसंवेदन स्वभावी मैं ही हूं। अनंत स्वसंवेदन स्वभावी मैं हूं, ऐसे भीतर में देखते हुए देखने वाली अवस्था स्वसंवेदन रूप हो जाती है। अपने आप ऐसा मैं एकांत शुद्ध अनुभूति मात्र हूं। स्वसंवेदन को अनुभूति को एक ही बात है, वेदन और अनुभूति एकार्थवाचक शब्द है। यहां क्या कहा कि मात्र एकांत शुद्ध अनुभव स्वरूप, अनुभव रूप ही मैं हूं, अनुभूति स्वरूप ही हूं, यानी स्वसंवेदनमयी स्वभाव ही मेरा स्वरूप है, ऐसा मैं हूं। विजुअलाइज करना है, जो स्वसंवेदन विज्ञान में वेदन चल रहा है वो आविर्भूत होने लगेगा। देखो भीतर में चल ही रहा है। लोग कहते हैं कि ज्ञानी के पास तो परिणति है, आत्म परिणति है, लेकिन आपके पास ज्ञान वेदन की भी परिणति तो है ही, वही आत्म परिणति है। वही आत्म परिणति है आपके पास भी है, दिखने में नहीं आती है वो बात अलग है, लेकिन है तो सही। नहीं दिखे इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं है, है तो सही। तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको सुनने से जब इस बात का पता लगता है तो उसका आनंद उल्लास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उसका रस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उसकी रुचि पैदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अभी तक मालूम नहीं था, अब तो बोल दिया, कह दिया, सुना दिया कि आपके पास भी ज्ञान वेदन की, ज्ञान के अंतरंग में ज्ञान धारा मौजूद है, ज्ञान धारा मौजूद है, उसका नाश कभी नहीं होता किसी को भी, और आत्मा उस स्वरूप है, आत्मा उस स्वरूप ही आत्मा है। इसलिए मुझे स्वसंवेदन उत्पन्न करने का बाकी नहीं है, जो है उसको देखना है, देखने से वो आविर्भूत हो जाता है, आविर्भूत होता है उसको स्वसंवेदन प्रकट किया ऐसा बोलने में आता है, उसके पहले पकड़ में नहीं आता था तो अप्रगट, प्रकट होने के बावजूद भी अप्रगट उसको हो गया, प्रकट होने के बावजूद भी वो प्रकट हो, अप्रगट हो गया वो। चतुरा नहीं आया तो नहीं के बराबर है, और नजर आया तो प्रत्यक्ष है। इसलिए मात्र में एकांत शुद्ध अनुभूति स्वरूप प्रत्यक्ष हूं, कैसा हूं मैं, प्रत्यक्ष हूं। ये वेदन है वो अनुमान का विषय नहीं है, इसलिए वहां प्रत्यक्षता लागू हो जाती है, माने है ही प्रत्यक्षता, मैं प्रत्यक्ष अनुभूति स्वरूप, ऐसा लेना है भाव में, उसको प्रत्यक्ष करो। विश्वास करो कि मैं प्रत्यक्ष हूं, ज्ञानी लोग क्या करते हैं, आता है अनुभव प्रकाश में, ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी का धंधा क्या, ठीक, मैंने वो निरंतर क्या करता है, कि प्रतीति में स्वरूप को प्रत्यक्ष कर करके स्वसंवेदन को बढ़ाते हैं, अपने ज्ञान वेदन को बढ़ाते रहते हैं, जब कभी तीव्र बढ़ जाता है तो शुद्धोपयोग में आ जाता है, वरना परिणति तगड़ी होती जाती है, परिणति तगड़ी होती जाती है। ये ज्ञानी का कार्य है, ज्ञानी का ये निरंतर कार्य है। પ્રેક્ટિસ કા વિષય પૂર્ણ હોને કા હે ને, ઇસલિયે યે પ્રેક્ટિસ કા વિષય હે, આપકો ઓપરેશન કરને કો આ ગયા, तो एक दफे कर लिया तो क्या हो गया, क्या बार बार करोगे, जितना ही बार बार करोगे उतना ही एक्सपर्ट हो जाओगे। मैं
पैसा
तो इसमें आनंद मिलता है, स्वसंवेदन में आनंद मिलता है। तो मन होता है कि नहीं होता है, भाव होता है कि नहीं होता है, एक आदमी को संगीत में कोई गाना पसंद आता है या कोई तर्ज पसंद आती है, क्या करेगा वो? बार बार सुनेगा, क्या करेगा? बार बार सुनेगा। जिसको जिस विषय की रुचि होती है उसको वो बार बार उसी विषय में उसके परिणाम लगे ही रहेंगे। बहुत नेचुरल है वो, उसमें तो निराकुल सुख शांति और आनंद है, क्यों बार बार नहीं करेगा वो परिणाम? मात्र एकांत शुद्ध अनुभव स्वरूप में प्रत्यक्ष हूँ, प्रत्यक्ष में हूँ, ऐसा ही मैं प्रत्यक्ष हूँ, क्योंकि मेरा वेदन, मेरा स्वसंवेदन मेरे से परोक्ष कैसे हो सकता है या कैसे रह सकता है? वेदन परोक्ष होता है क्या? वेदन कभी परोक्ष हो सकता नहीं है। क्यों? कि वेदन करने वाला मैं और वेदन में आने वाला भी एक ही काल में मैं ही वेद्य वेदक स्वरूप हूँ, इसलिए मैं प्रत्यक्ष हूँ। अनुभव में मैं ही वेद्य वेदक होने से मैं प्रत्यक्ष हूँ। भावना में, स्वरूप की भावना में इतना रस होता है कि परिणाम उसमें थम जाए, उस रस में परिणाम थम जाए, वहां से निकलने को गमी ही नहीं, क्योंकि उसमें शांत रस है। सर्व आत्मा के अनेक प्रकार के भावों में अनेक रस होता है, भावों का भी रस होता है। नौ रस है ना, उसमें एक शांत रस है, शौर्य रस है, करुण रस है, हास्य रस है, ऐसे रस है ना, नौ रस है, हैं? भयानक रस है, विभत्स रस है, ऐसे नौ रस है। उसमें शांत रस भी एक रस है। ये भावों का रसों, सभी रसों का राजा है शांत रस। ये आत्मभावना में शांत रस है, क्योंकि खुद ही अनंत शांति का पिंड है, आएगा वो भी भावना में आएगा, शांत रस की भी भावना आएगी। एक दस भावना लिया है यहाँ से, कृपाल देव ने उतना खोल करके नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ से दस भावना खोली जाती है। इसमें ये चौथी भावना चल रही है कि मात्र में एकांत, एकांत शुद्ध स्वसंवेदन स्वभाव मई प्रत्यक्ष हूँ, प्रत्यक्ष ही हूँ। और मैं निर्विकल्प हूँ। कैसा हूँ मैं? विकल्प तो चारित्र गुण के, राग के, अवस्था के साथ रहता है, और मैं तो सामर्थ्य स्वरूप हूँ, अवस्था भी नहीं तो अवस्था में राग और राग का एक प्रकार उसको विकल्प कहते हैं, जबकि मैं तो सामर्थ्य स्वरूप होने से और अनंत गुण का एक रूप सामर्थ्य स्वभाव स्वरूप होने से मैं तो स्वरूप से ही निर्विकल्प हूँ। विकल्प का कोई अवकाश मेरे स्वरूप में, पर्याय का अवकाश नहीं तो विकल्प का अवकाश कहाँ से होगा। तो बीच में कृपालु देव ने कुछ प्रश्न भी उठाए हैं, वो इस तरह के उठाए हैं कि जब मैं वहाँ ऐसा हूँ तो फिर मेरे में विक्षेप कौन सा, विक्षेप माने खलभली, जिस विक्षेप के कारण से चित्त बेचैन रहता है। जब ऐसा हूं तो विक्षेप किस बात का, बताइए किस बात का विक्षेप, प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न का क्या अर्थ होता है मालूम है, जोर से नास्ति हुए, जोर से जिसका निषेध हुए वो बात बताने के लिए प्रश्न रखा जाता है। स्ट्रेस करने के लिए, उस प्रकार से स्ट्रेस करने के लिए। जैसे कोई आदमी बहुत बुद्धिमान है तो क्या कहेगा कि क्या मैं अक्कल बिना का हूं क्या, ऐसा पूछेगा, क्या मेरे में अक्कल नहीं है क्या। बहुत बुद्धिमान होता है वो क्या पूछेगा, क्या स्ट्रेस क्या होता है इसमें, तो बात ही नहीं है इधर, वो बात इधर है ही नहीं। जब मैं ऐसा हूं तो फिर विक्षेप किस बात का। तो सुगानी जी ने एक पत्र में लिखा है कि परिणति जब अनंत शांति के पिंड के साथ रहती है, मेरी परिणति जब अनंत शांति के पिंड के साथ रहती है फिर चिंता काहे की। कलकत्ता में जब कुछ पैसे नहीं थे, रहने के लिए एक कमरा भी किराए का खर्चा करने का पैसा नहीं था, उस जमाने में तो बहुत किराया कम होगा, उस जमाने में तो किराया बहुत कम होगा, उतना भी पैसा नहीं था। उस वक्त वो लिखते हैं कि चिंता का है कि मेरी परिणति अनंत शांति के पिंड के साथ रहती है, कोई चिंता नहीं है, पूरा कलकत्ता में मैं एक ही सुखी हूँ। क्या 70 लाख की आबादी में, आबादी मैंने वस्ती पॉपुलेशन, उसमें अकेला मैं एक ही सुखी हूँ। क्यों कि सबके परिणाम भागा दौड़ी करते हैं, कुछ संपत्ति संयोग होने के बाद भी परिणाम भागा दौड़ी करते हैं, मेरे पास कुछ है या नहीं है, लोग कहते हैं कि नहीं है, लेकिन मेरे पास तो अनंत शांति का पिंड है, इसलिए मेरे परिणाम कहीं भागा दौड़ी करते। विकल्प थोड़ा आया, प्रवृत्ति हो गई, कुछ मिला नहीं मिला, जो हुआ सो हुआ, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में शांति को अनुभव करते थे। अपने को तो कितना भी होवे, परिणाम का ठिकाना नहीं। नहीं रहता है। तो ज्ञानी कहते हैं कि क्या हो गया है तुझे, तुझे क्या हो गया है, तेरा अन्न शांति का पिंड को क्यों भूल जाता है? एक सेकंड में भीतर में सावधान हो जा, जो स्वरूप है उसकी सावधानी में आ जा। एक सेकंड लगेगी, दूसरी सेकंड उसमें नहीं लगती है। स्वरूप सावधानी में देर कितनी है? एक सेकंड में सावधान हो जाता है कि मैं ऐसा हूं। वहां विक्षेप क्या, विकल्प क्या, उसमें विक्षेप क्या और उसमें किस चीज का विकल्प करना है, क्या विकल्प, क्यों विकल्प, विकल्प क्यों? ये विकल्प करने की कोई आवश्यकता दिखती नहीं है। भय क्या, भय किसका, किस बात का भय? अव्याबाध स्वरूप को किस बात का भय? कुछ बाधाएं आ जाए तो भय होती है। ये भय प्रकृति वाले लोग बात बात में भयान्वित हो जाते हैं। अरे कभी कभी तो बिना कारण उसको भय चालू हो जाता है, उसको वो बोलने लगते हैं हमको भय होता है। किस बात का समझ में नहीं आता, अंदर में भय प्रकृति का उदय हो। कभी क्या होता है कि बाहर में कोई ऐसा प्रसंग भी नहीं हो कि जिस कारण से भय हो जाए, तो बिना कारण, बाहर में कोई कारण नहीं हो ऐसे, बिना कारण अंदर में भय लगने लगता है। बोलेगा मुझे भय लगता है, किस बात पर, वो मालूम नहीं। क्या बोलेगा, वो मालूम नहीं। यहाँ तो कहते हैं कि भय किस बात का है, स्ट्रेस करते हैं जोर से, भय किस बात का बताइए, कोई बात का भय आ सकता हो, ऐसी कोई बात बता दो कि भय हो सकता हो, ऐसी कोई भी बात बताओ। भय वाली कोई बात आत्मा को लागू पड़ती नहीं, आत्मा का कोई संबंध नहीं इन बात से, वो निरपेक्ष है, स्वरूप से ही आत्मा निरपेक्ष है। भय क्या, खेद क्या, खेद मैंने क्लेश, खेद माने क्लेश, किस बात का क्लेश होता है, दुख होता है? परिपूर्ण तत्व है, उसको क्लेश करने का कारण क्या है? स्वरूप से जब मैं परिपूर्ण हूं, क्लेश की कौन सी बात है? और स्वरूप से अन्यथा ऐसी दूसरी अवस्था भी क्या कि जो स्वरूप से बी जातीय, विरुद्ध जातीय, दूसरे प्रकार की हो, ऐसी अवस्था भी कैसे हो सकती है? स्वरूप में तो अन्य प्रकार की अवस्था होने का स्वभाव ही नहीं है कि हो सके, इसलिए आत्मा स्वरूप से विभाव, स्वभाव से विभाव नहीं कर सकता। जो अनंत काल से वर्तमान तक विभाव अवस्था चल रही है लेकिन स्वभाव से नहीं, स्वभाव से देखो तो वो ऐसे विभाव कर नहीं सके, ऐसा स्वरूप ही है, ऐसा स्वरूपवान है कि कर ही नहीं सके। जैसे गर्मी को जानने वाला ज्ञान खुद गर्म नहीं होता, होता है क्या? ठंड को जानने वाला ज्ञान खुद ठंडा नहीं होता, होता है क्या? ऐसे विभाव को जानने वाला ज्ञान खुद विभाव रूप नहीं हो सकता, होता नहीं, हो सकता भी नहीं। ऐसा मेरा स्वरूप है, अन्य अवस्था कैसे, अन्य अवस्था कैसी? देखो स्वभाव को, अन्य अवस्था कैसी? हो ही नहीं सकते। ऐसा भीतर में अपने आप को देखो। ऐसा में मात्र निर्विकल्प स्वरूप हूं और शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध, कैसा हूं मैं? शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध परम पवित्र हूं। तीन दफे लिया है, मैं शुद्ध हूं, शुद्ध हूं, प्रकृष्ट शुद्ध हूं। कृपालु देव का शब्द संयोजन विभिन्न प्रकार का आता है, उत्कृष्ट हूं, सर्वोत्कृष्ट हूं और प्रकृष्ट भी हूं। प्रकृष्ट मैंने परम परम शुद्ध हूं, शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध परम शुद्ध उत्कृष्ट शुद्ध सर्वोत्कृष्ट शुद्ध बिल्कुल शुद्ध, जिसमें अशुद्धता की शंका भी नहीं कर सकते कोई, ऐसा मैं प्रकृष्ट शुद्ध हूं। हमारे वीरजी भाई एक दृष्टांत देते थे, वीरजी भाई वारिया, कि एक बर्तन में दूध, गाय का दूध लेना हो तो बर्तन को साफ रखना पड़ेगा, बिना साफ हुए तो दूध तो भी खराब हो जाता है। तो जो जिस बर्तन में हम दूध लेते हैं उस बर्तन तो साफ होना चाहिए, तो उसका क्या है, पहले मांजते हैं, फिर उसको धोते हैं, उटकी ने विसळे, अपने काठियावाड़ी भाषा में हूं कि उटकी ने विसळे, मांज करके, अभी पाउडर आता है, उन दिनों में राख से मांजते थे, फिर पानी से धो डालते हैं। पानी वाला बर्तन में अगर दूध लें तो हो सकता है कि उतना पानी आ गया, लेकिन फिर उसको धूप में सुखा दें, कैसा, तो पानी उड़ गया, पानी उसमें गर्मी के कारण से बिल्कुल कोरा हो गया। उस बर्तन में सीधा दूध गाय के आंचल में से निकाल करके भरा, अब उस दूध में कोई शंका होगी कि ये दूध अशुद्ध होएगा कि नहीं होएगा, क्योंकि कोरा बर्तन में दूध भरा है। ऐसे आत्मा अनादि से इतना कोरा का कोरा है, उसको बताने के लिए कहते कि शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध हूं, इसलिए परम पवित्र हूं। अशुद्धता से अपवित्रता आती है, मैं तो परमोत्कृष्ट शुद्ध हूँ इसलिए परमोत्कृष्ट पवित्र हूँ, ऐसा मेरा स्वरूप है। और परम शांत चैतन्य हूँ, परम शांत अमृतमयी शांति जिसमें भरी है, कैसे परम शांत सुधारस जिसमें भरा है, प्रदेश प्रदेश में आत्मा की सुधामयी शांति, अमृतमयी शांति, परम मैंने उत्कृष्ट बेहद मेरे प्रदेश प्रदेश में भरी है। मेरे स्वरूप में अशांति होने का कोई अवकाश नहीं, कोई गुंजाश नहीं, कोई स्कोप नहीं, उतनी शांति ठोस शांति भरी है, ऐसा मेरा स्वरूप है। अनंत शांति का पिंड ही है चैतन्य आत्मा, अनंत शांति का पिंड है। परम शांत सुधामयी चैतन्य में हूं, ऐसा मैं मात्र परिपूर्ण अंतर्मुखी स्वभाव वाला हूं, दूसरा निर्विकल्प लिया है नहीं, कृपाल ने निर्विकल्प शब्द लिया है, वहां लेना है अंतर्मुखी स्वभाव है मेरा, कैसा है, एक अंश भी मेरे परिणाम बाहर निकले ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। जैसे अरिहंत और सिद्ध परमात्मा निरवशेष अंतर्मुख है, कोई पर्याय का अवशेष मैंने बाकी हुआ अंश बाह्य नहीं जाता, बाहर में नहीं जाता, ऐसा वो रह गए हमेशा के लिए, हमेश के लिए परिपूर्ण अंतर्मुख रह गए। क्यों क्यों ऐसा रह गए, क्योंकि ऐसा स्वरूप है रहने का, ऐसा ही रहने का उसका स्वभाव और स्वरूप है, इसलिए रह गए। ऐसा मैं वर्तमान में भी परिपूर्ण अंतर्मुख स्वभावी हूँ, और मैं ऐसा अभेद सभी प्रकार जो लिया है उसका अभेदता लेना है, जो भी आठों प्रकार से बात कही वो एक ही स्वरूप में अभेद है, आठ भेद नहीं है स्वरूप में, ऐसे आठ भेद, आठों भेद की अभेद मूर्ति, ऐसा मैं अभेद निज स्वरूप में हूँ, ऐसा मैं उपयोग करता हूँ, उपयोग करता हूँ, मैंने सावधानी से मेरे उपयोग में वो बात आती है, मेरा उपयोग ऐसा अभेद स्वरूप में सावधान अब हुआ है, इसलिए मैं ऐसा अभेद निज स्वरूप में ही उपयोग करता हूँ, और ऐसा निज अभेद स्वरूप में व्याप्य व्यापक पने से तन्मय होता हूँ, तन्मय होता हूँ व्याप्य व्यापक भाव से, ऐसे अभेद व्याप्य व्यापक भाव में मैं तन्मय होता हूँ, तन्मय रहता हूँ, ऐसा करके क्या है कि शांति ही शांति ही शांति जम गए अंदर में, अंदर में भावना भाते भाते अंदर में घुस गए, कहाँ गए कितने गए कि बाहर वालों को पता लगे नहीं, उतने अंदर गए, उंडे 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 स्वरूप में उतने चले जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं देह वाला हूँ, भूल जाते हैं कि मैं अकेला चैतन्य, अकेला चैतन्य, चैतन्य माय तन्मय पना हो गया। इस तरह से इस पत्र में गोपालु देव ने आत्मभावना भाई है, ऐसे आत्मभावना भाने वाले केवल ज्ञान को प्राप्त આત્મ ભાવના ભાવતા જીવ લહે કેવલ જ્ઞાન. એ આત્મ ભાવના એસી હોતી હૈ જો ખુદ મેં ભાઈ જાય.